आइए चलते हैं अपने सीरीज मेरी जन्नत की मजलिसें एपिसोड 4 की तरफ। मैं अपनी सवारी पे सवार खुशी खुशी अपने महल की तरफ रवान दवा थी कि यूं ही ख्याल आया क्यों ना अम्मा अब्बा की ज़ियारत कर लूं। ये तो मुझे पता चल चुका था कि वो मेरे ही दर्जे पे हैं, मगर कहाँ ये नहीं मालूम था। मैंने बस इतना ही कहा सुभानक अल्लाहुम्मा और सवारी ने अपना रुख फौरन मोड़ लिया। ये अजीब ही जगह थी जहां पे कुछ भी चाहिए होता तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उसका सोच में आ जाना ही काफी था और वो काम पूरा हो जाता। कुन कहने की देर होती थी और वो चीज हो जाती। मेरी ये सवारी उड़ते उड़ते एक नहायत खूबसूरत और हसीन और जमील महल के सामने उतर गई। मैंने जो ही सवारी से कदम उतारा बहुत से खादिम लपके और मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा अम्मी जान अंदर हैं? बोले जी हाँ, तशरीफ लाई है। मैं खादिमों के झुरमट में बड़े नाज के साथ चलते हुए महल में दाखिल हुई। अम्मी तो जैसे मेरे ही इंतजार में थी। ये जवान और खूबसूरत लड़की, ये मेरी अम्मी है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो हंसने लगी, आगे बढ़ी और मुझे गले से लगा लिया। हाय अम्मा, कितना अरसा हो गया आपको मिले हुए। आपके बाद तो दुनिया फीकी हो गई थी, आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी? मैं जोर से अम्मा से चिमटी हुई थी, जैसे आज मैं फिर वही छोटी सी बच्ची हूं जो माँ के सीने से लग के सुकून पा लेती थी। बहुत देर तक मैं उनके साथ लगी रही, वो भी मेरे सर पे हाथ फेरती रही। फिर मैंने उनसे अलग होके गौर से उनके चेहरे को देखा तो हंस पड़ी। मैंने कहा अम्मा ये आप हैं, आप तो मेरी सहेली लग रही हैं, इतना हुसन मेरी माँ का। अम्मा दुनिया में भी बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर बच्चों के गमों ने उनको मार दिया, सारा हुसन मांद पड़ गया। लेकिन अब तो हुसन का ये आलम था कि उनके चेहरे से नजरें ही नहीं हटती थी। वो मेरा हाथ पकड़ के सामने बिछी हुई नशिस्त पर ले गई, जहां पे तरह तरह के खाने पहले से चुने हुए थे। मैंने कहा कैसी हैं आप? बोली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे सारे गम दूर कर दिए और बगैर जहन्नुम दिखाए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सच कहा। अच्छा ये बताएं अब्बा कहाँ हैं? बेटा वो भी आते ही होंगे, असल में तुम्हारा भाई खालिद। क्या हुआ खालिद को? मैं घबरा गई, मुझे तो पहले ही डर था उसके साथ कुछ हो ना जाए। वो दुनिया में आवारा हो गया था, बुरी सोहबत ने उसको वालदैन का भी नाफरमान बना दिया था। मेरे वालिद साहब इंतहाई नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार, हर नमाज जमात से पढ़ने वाले, बहुत शरीफ उन नफ्स। अम्मी को भी हमेशा हमने नमाज रोजे का पाबंद देखा, पर्देदार, इंतहाई मुत्तकी, कभी किसी की बात नहीं करती थी। मगर ना जाने क्यों खालिद में तो माँ बाप की कोई बात ही नहीं आई थी। बारहा समझाने के बावजूद वो एक नहीं सुनता था। अम्मी बताएं ना क्या हुआ खालिद को? वो आहिस्ता से बोली, बेटा वो आग में चला गया था। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, यहां हम अपनी जन्नत में आके हंसी खुशी रहने लगे, हम क्या जाने कि उसके साथ ये हो रहा है। फिर जब अल्लाह ताला ने उसको माफ करने का इरादा फरमाया, तब हमारे दिलों में उसकी याद डाली। फिर तुम्हारे अब्बा ने कहा कि खालिद कहीं नजर नहीं आ रहा, बाकी सब बच्चों का तो पता चल चुका था, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहां गया। हमने जब इधर उधर पता किया तो मालूम हुआ कि वो तो कभी जन्नत में दाखिल ही नहीं हुआ, वो तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है जहन्नुम में। तब हम परेशान हो गए, फिर जब सब नेक लोगों को शिफात करने की इजाजत मिली तो तुम्हारे बाबा को भी मिली और उन्होंने उसकी शिफात की, तब वो जहन्नुम से निकला। लेकिन तब तक उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, वो पूरी तरह जल चुका था, उसका कुछ नहीं रह गया था। यूं लगता था कि उसने तो कभी जिंदगी में कोई सुख देखा ही नहीं, उस पर कोई नेमत कभी आई नहीं, दूर दूर तक किसी नेमत से उसका वास्ता नहीं। रंग स्याह और झल के भूसम। हां अम्मा, आप और अब्बा तो हमेशा उसको समझाते रहे, मगर उसने भी कभी किसी की सुन के ना दी। जो लोग दुनिया में नसीहत नहीं पकड़ते और इन्हीं खुशफहमियों में रहते हैं कि कुछ नहीं होता, हमको फलां बचा लेगा और हम तो फलां के पैरोकार हैं, या हम तो फलां के पीछे लग के जन्नत में चले जाएंगे, उनके साथ यही तो होता है। हाँ बेटा, मैं जब भी उसको गलत कामों से मना करती थी कहता था, आप जो इतनी नेक है वहां जाके आप मुझे बचा लेना, मगर देखो आप अपने गुनाहों की सजा कितना अरसा भुगतता रहा। ठीक है, आप अपने ईमान की वजह से निकल तो आया, मगर आप खुद कहता है कि दुनिया में कोई गुनाह भी इस काबिल नहीं था जिसके पीछे मैं जहन्नुम में इतना अरसा गुजारता, कोई लज्जत इस काबिल नहीं थी कि इसके पीछे एक लम्हा भी आग में जाना कबूल करता, कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसका मजा इतना होता कि मैं उसके लिए जहन्नुम का सौदा करता। हाँ अम्मा, मैंने ठंडी आ भर के कहा, ये बातें तो वहां समझ नहीं आती थी। इंसान नाफरमानियां करता रहता है और शैतान उसको इसी खुशफहमी में डाले रखता है कि कुछ नहीं होता, तुम बहुत अच्छे हो, फिक्र ना करो, तुम बच जाओगे। और वैसे भी कुछ दिन जहन्नुम में चले गए तो आखिर में तो निकल ही आओगे। हाँ बेटा, काश इंसान ये बात समझ जाए जो जहन्नुम के अजाब में जल के समझ आई। हालांकि दुनिया में आग हमारे घरों में जलती थी और हम आग को रोज देखते थे, जानते थे कि जहन्नुम की आग इससे 70 गुना ज्यादा गर्म है, फिर भी डरते नहीं थे गुनाह करने से, फिर भी सोचते नहीं थे क्या बनेगा अगर उस आग में चलेगा। अल्लाह ताला की नाफरमानियां भी करते थे और मजे से रहते थे, भूले हुए थे कि क्या कब यहां भी आना होगा। बेटा दुनिया में तो मामूली सर दर्द की भी एक रात काटनी मुश्किल हो जाती है, कहां जहन्नुम का दर्द हम जैसों से सहा जाए। एक दांत का दर्द तड़पा के रख देता, और कहां जहन्नुम का दर्द, इसका तो एक लम्हा भी सहना इंसान के बस में नहीं। मुझसे खालिद रो रो के कह रहा था, अम्मा मैं तो आग में जलते हुए भी चीख रहा था कि मुझे मौत ही दे दो, मगर मौत भी कहीं दिखाई नहीं देती थी। बता रहा था कि उसके जो गैर मुस्लिम दोस्त थे वो इसको निकलते देखकर हसरत कर रहे थे कि काश हम आज मुसलमान होते तो कभी कभी तो उम्मीद होती निकलने की, मगर उनकी तो कोई उम्मीद भी नहीं। तुम्हारे अब्बा उसी के पास गए मैं। अम्मा मैं तो ये सोचती हूं कितनी थोड़ी सी जिंदगी की लज्जत के लिए, या लोगों की वाहवाहों के लिए, या तारीफों के लिए, या उनकी नजरों में जच जाने के लिए, या थोड़े से वक्ती फायदे के लिए हम इतनी बड़ी आग अपने लिए खरीद लेते, क्या वो मजे इस काबिल है? चंद दिन के अम्मी की खादमाएं मेरे हाथ में प्लेट थमाने लगी और खाना सर्व करने लगी। मैंने खाना खाते हुए कहा, अम्मा आपके हाथ का खाना तो दुनिया में भी बहुत लजीज होता था, और आपके जन्नत के घर का खाना भी बहुत मजेदार है। अम्मा बोली, मैं सबके मैं कुर्बान, तूने तो दुनिया में भी हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश की, और तुझे पता है, तो तेरे कुरान सीखने की वजह से हमें तो हशर के मैदान में भी इतने कीमती जोड़े पहनाए गए, ऐसी इज्जतें दी गई। हम तो हैरान रह गए। फिर हमने पूछा, ये क्यों बताया गया? ये आपकी बेटी जो कुरान सीखती थी, पढ़ती थी, इसकी वजह से। मेरा तो दिल अम्मा की इस बात से इतना खुश हो गया। मेरे गमों ने दुनिया में तो उनको आधा कर दिया था, चलो मेरी वजह से कम से कम यहां तो उनको कुछ सुख मिला। अम्मा मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, मेरी बेटी, तूने हमें बहुत खुश किया। मैं खुशी से निहाल हो रही थी। वाकई जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे मेरे वालदैन मिल गए, जिनके मरने के बाद मैं उनके गम में बहुत उदास रहती थी। मेरे शौहर मिल गए, मेरे बच्चे मिल गए, सबका प्यार, और सबसे बढ़कर ये कि ये प्यारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए अब मेरे पास होंगे, हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने अम्मा के कंधे पर सर रख दिया। ऐसा सुकून, इतना प्यार, इतनी खुशियां, किसी चीज की फिक्र नहीं यहां। ना जॉब पे जाने की फिक्र, ना पैसे कमाने की फिक्र, ना रेंट देने की फिक्र, ना बिल अदा करने की परेशानी, ना ये जल्दी के सुबह जॉब पे जाना है, जल्दी काम निपटाओ। मैंने ये सब हालात देखे हैं, इसलिए मैं जानती हूं कैसे मैं वीकेंड्स का इंतजार किया करती थी। साल में सिर्फ एक पेड वेकेशन होती थी, जिसकी प्लानिंग अरसाए दराज से कर रही होती थी। हर जब वो वेकेशन आती थी तो वक्त पलक झपकने में गुजर जाता था, और अभी तो थकावट भी दूर नहीं हुई होती थी। वीकेंड मिनटों में चला जाता था। फिर जब दूसरी शादी हुई तो ऐसे मसले शुरू हो गए कि जहनी अजियत में रही। यहां ना कोई तंज के तीर है, ना कोई कड़वी कसीली बातें हैं, कोई आपको कुछ कहता ही नहीं। हर तरफ प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। इंसान दुनिया में कितने जतन करता है इस मोहब्बत को पाने के लिए, कि फलां की आंख का तारा बन जाऊं, फलां से मोहब्बत पालूं, फलां मुझे प्यार करने लगे। मगर कभी किसी का मूड ऑफ, कभी कोई नाराज, कभी किसी के गिले शिकवे। वो गिले शिकवे दूर करते करते ही जिंदगियां गुजर जाती थी। और यहां सभी राजी। मैं सुकून की तलाश में सारी जिंदगी भागती रही, मगर वहां सुकून ना मिल सका। आखिर मिलता भी कैसे? वो दुनिया थी, जन्नत ना थी। जो सुकून चाहता है, वाकई सुकून से रहना चाहता है, वो जन्नत का राही बने। जो खुशियां चाहता है, वो इस घर की कीमत अदा करने के लिए कोशिश करे। जो मोहब्बतें चाहता है, वो यहां की तैयारी करे। मैं पता नहीं कितनी ही देर अम्मा के कंधे पर सर रखे इसी तरह सोचों में पड़ी रही, कि एक खादिम मेरे सामने मशरूब से भरा सोने का जाम ले आया और बोला, ये जन्नत के चश्मे सलसबील की शराब है, इसकी खुशबू ऐसी मशहूर कुन थी। वो बोला, इसमें सौंठ की आमेजिश है। मैंने जाम मुंह को लगाया तो उसकी लज्जत बयान से बाहर है। ऐसी लजीज शराब जिसका सानी कोई नहीं दुनिया में। जो खाना खाया था उससे भी तबीयत बोझल नहीं हुई, और जो शराब पी तो उससे भी मेदे में कोई भारीपन नहीं हुआ। यूं लगा सब कुछ खुद ब खुद बैठे बैठे ही हजम हो गया। हम साथ साथ खाना खा रहे थे और हमारे सामने ऐसे ऐसे हसीन मनाजिर चल रहे थे कि पता नहीं कितना अरसा गुजर गया, पता भी नहीं चला। हम इन्हीं मनाजिर में खोए रहे। ना जाने क्यों लोग दुनिया में कहते थे जन्नत में बोर ना हो जाए, यहां तो बोरियत नाम की चीज ही नहीं। हर आन नए मनाजिर, हुसन ही हुसन, खुशियां ही खुशियां, प्यारों का साथ, मोहब्बतें, रंग ही रंग, यहां कौन बोर हो सकता है। और मेरी तो खाने की गुंजाइश भी इतनी बढ़ गई थी जितना दुनिया में खाती थी उससे कहीं ज्यादा खा रही थी। कई कई प्लेटें मजे से खा लेती थी। हर खाना ही इतना लजीज था। मैंने अम्मा से मजाक करते हुए कहा, अम्मा खाने के बाद अब ये तो नहीं कहोगी लड़कियों अब सब समेट लेना, मैं तो पका पका के थक गई। हम दोनों ने कहकहा लगाया और हमारे कहकहे से सारा माहौल रोशन हो गया। वाकई दुनिया में तो कोई दावत होती थी दो चार खाने बना लेते थे तो उसके बाद उसको संभालना, उसको रखने का झंझट, बर्तन धोने, किचन साफ करना, खाना खाना तो 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं होता था मगर समेटने में घंटों लग जाते थे और पकाने में तो अम्मा पूरा दिन किचन में खड़ी रहती थी। हम यूं ही न जाने कब तक हंसी मजाक करते रहे कि सामने से अब्बा जान आते दिखाई दिए। मैं उनकी तरफ उठकर दौड़ी, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और प्यार करते हुए कहने लगे, तुमने हमें बहुत इज्जत दिलाई है, तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। ये सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं अपने वालदेन को खुश करूं। मैंने कहा, अम्मा अब्बा अब आप मुझे इजाजत दें। अब्बा बोले, बेटा कुछ देर तो बैठो, नहीं फिर आऊंगी, मैं जरा जाके अपने बच्चों की खबर लूं। जानते हैं उन सब की तरक्की मेरे दर्जे पे हो गई। अब्बा इस बात से बहुत खुश हुए, फिर तो जल्दी उनसे मिलाओ। मैंने कहा, हाँ जरूर। और अब्बा आप तो किसी बादशाह सलामत से कम नहीं लग रहे, ऐसे नौजवान ऐसे खूबसूरत कि कोई दुनिया का बादशाह देख लेता तो उसको अपनी बादशाहत हकीर लगने लगती। अब्बा हंस दिए, बोले अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मर्तबे अल्लाह ताला ने अता किए। मैंने कहा, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हम तो इस काबिल भी ना थे जो उसने हमारी कदरदानी की है। मैं दोनों को सलाम करके वहां से निकल गई। मेरा दिल खुशी से खिला हुआ था। अपने वालदेन को प्राउड करना बहुत बड़ा ऑनर होता है जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया था। मेरी सवारी हवाओं में उड़ रही थी कि अपनी दोस्त का ख्याल आया। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो मेरी कुरान की साथी थी और मुझसे बहुत मुखलिस थी। उसका ख्याल आना था और मैंने फिर वही कलिमात कहे और सवारी मुझे लेकर उसके महल के बाहर उतर गई। वो बाहर ही खड़ी थी। मैं बेकाबू होके चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी, आशी आशी। वो चौंक के पलटी और वो भी मेरी तरफ दीवानी होके भागती हुई आई। गुड़िया तो, हाँ मैं, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई थी तुम? गुड़िया कहने लगी, इस दुनिया में हम एक दफा जुदा हुए तो उसके बाद आज मिले। दुनिया का तो कयाम भी आरजी था लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत में मिला दिया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। आओ मेरे साथ मेरे बाग की सैर को चलते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कौन सा घर पहुंच के कुछ काम करना, मैं तो सब कामों से फारिग हूं, मुझे तो छुट्टी मिल गई। हम दोनों हंस दी। वो बोली, हाँ हाँ जहां चाहे जाएं, जिधर चाहे घूमें, ना अम्मी से इजाजत की जरूरत, ना शौहर को पूछने की जरूरत, ना कोई रोक टोक, मजा ही मजा, हर तरफ सलामती सलामती, अमन ही अमन, ना जान का खतरा, ना माल का खतरा, ना इज्जत का खतरा, इतने कीमती महल हैं और किसी चोर का डर नहीं, किसी लुटेरे का खौफ नहीं, किसी बदअमनी का खदशा नहीं, ना घरों के कामों की जिम्मेदारियां, ना बच्चों के बिगड़ने का डर, ना पैसे जमा करने की फिक्र कि बुढ़ापे में क्या करेंगे। ना कोई मेहनत और ना कोई मुशक्कत। हम दोनों सहेलियां हाथों में हार डाले इसी तरह बातें करते करते उसके बाग की तरफ चल दी। रास्ते में एक दरख्त के करीब से गुजरे तो वो कहने लगी, क्या कपड़े चेंज करना चाहती हो? मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, इधर आओ। हम उस दरख्त के सामने खड़े हुए तो पलक झपकने में मेरे पिछले 70 जोड़े गायब हो गए और नए 70 जोड़े जो इंतहाई खूबसूरत थे वो मेरे जिस्म पर आ गए। उसका भी लिबास बहुत बेशकीमत था, बहुत खूबसूरत था, मगर फिर भी उसने खड़े खड़े नए लिबास ले लिया। वो बोली, तुम बहुत हसीन लग रही। मैंने कहा, और तुम भी। हम अभी वहीं खड़े थे कि हमारे कानों में किसी गाने की आवाज आई, एक इंतहाई सुरीली आवाज। यूं लग रहा था कानों में रस घोल रही है। इतनी मिठास थी उस आवाज में, इतनी नरमी, इतनी दिलकश कि जी चाहता था सुनते ही रहे। गौर किया तो पता चला अल्लाह ताला की हमदो सना के नगमे कोई गा रहा। नगमा ऐसा था कि बोल भी खूबसूरत और आवाज भी खूबसूरत। मैंने आशी से कहा, लोग यूं ही दीवाने होते थे दुनिया के म्यूजिक के पीछे, ये है असल म्यूजिक जो वाकई रूह की गिजा कहलाने के लायक है। फिर बहुत सारी आवाजें उस आवाज के साथ शामिल हो गई जिनसे सारी फिजा गूंज रही थी। आशी तो खो ही गई इस नगमे में, था ही ऐसा दिल को छू जाने वाला। जन्नत की हूरें गाना गा रही थी जिसमें अल्लाह ताला की हम थी, उसकी तस्बीह थी, उसकी तकदीस थी। ये उन लोगों का इनाम था जिन्होंने अपने कानों को दुनिया के बाजों गाजों से महफूज रखा, शैतानी गाने नहीं सुने। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसकी वसी और ये सल्तनत के बाग में पहुंच गए। एक तरफ नहरें बह रही थी, कहीं दूध की नहर जा रही थी, कहीं शहद की नहर बह रही थी। मैंने कहा, ये कैसी नहरें हैं? तमाम नहरें घड़े में नहीं थी, जमीन के ऊपर थी। आशी कहने लगी, हाँ मैं कहीं गई थी, वहां पे नहरें थी। मेरा जी चाहा कि कुछ नहरें इधर से भी गुजरने लगे। मैंने ख्वाहिश की और उन नहरों से एक शाख निकली और मेरे बाग से गुजरने लगी। खादिम हमें सलाम करने लगे, हर तरफ से खुशामदेद की आवाजें थी। मैंने सोचा, हम जिधर जाते हैं उधर कैसा प्रोटोकॉल मिलता है, ऐसे जैसे हम कोई मलकाएं हैं, कोई वीआईपी शख्सियत है। आशी कहने लगी, गुड़िया ये जन्नत है और यहां रब की मेहमान नवाजी है। जैसे उस रब की शान बुलंद, उसी तरह उसकी मेहमान नवाजी भी उसके मुताबिक है। खादिमों ने हमें ऐसे तख्तों पर ला बिठाया जहां खूबसूरत गाव तकिए हर तरफ लगे हुए थे। मौसम बहुत हसीन था, ना गर्मी थी और ना सर्दी। तख्त इतना आरामदेह था कि अगर नींद होती तो शायद मैं लंबा सो जाती। अगर जब से आई हूं इतने दिन गुजर गए, नींद का तो कोई नामो निशान ही नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, ना ही कोई तकलीफ। इतना घूमी फिरी, कहीं दर्द नहीं। हम दोनों सहेलियां तख्तों पे सज के बैठ गई। हमें एक ऐसी शराब खादमों ने पेश की जो सफेद रंग की थी और मैं तो उसके जाम को ही देखती रह गई। जाम ही इतना हसीन था और शराब भी लजीज और खुशबूदार। मैंने कहा, आशी दिखाओ अपनी वाली। वो बोली, ये भी तो वही है। मैंने कहा, नहीं मुझे तुम्हारी वाली अच्छी लग रही है। वो अपना जाम लेकर उठ के भागी, मैं उसके पीछे दौड़ी। हम हंस हंस कर एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। फिजाओं में हमारे कहके गूंज रहे थे, और हूरों के नगमों की आवाजें थी। अजीब ही मंजर था, बार बार फरिश्ते कहीं ना कहीं से आ जाते थे और कहते थे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व निअमा उकबद्दार, सलाम हो तुम पर, ये तुम्हारे सबर का बदला है, आखरत का घर तुम्हें मुबारक हो। दिल की खुशी क्या होती है ये मुझे जन्नत में आके पता चला। दुनिया की तो हर खुशी अपने साथ बेशुमार खदशात, खौफ और बहुत सारे इम्तिहानात और गम लेकर आती थी, मगर इन खुशियों के साथ कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई छिन जाने का डर नहीं, कोई कमी का अंदेशा नहीं। आशी कहने लगी, अरे देखो वो परिंदा कितना जबरदस्त है, इसके दिक्के कितने मजेदार होंगे। अभी उसके कहने की देर थी कि वो भुना हुआ हमारे सामने आकर गिर पड़ा। मैं बावजूद इसके कि अम्मी के घर से खाना खा के आई थी, उसके साथ बैठकर फिर खाने लगी। खाना भी लजीज और साथी भी बेहतरीन, ये तो मजे पे मजा हो गया। आज का एपिसोड यहीं तक। कितनी प्यारी बातें हैं जन्नत की, अल्लाह ताला हमें यहाँ पहुंचा दे सबको और वहां की मजलिसें हमें भी अता फरमाए। ये आप लोगों को शौक दिलाने के लिए, ताकि हमारे लिए नेकियां करना आसान हो जाए। ये है हमारा असल घर जहां हमें पहुंचना है, और इससे पहले थकना नहीं, इससे पहले हमने गिव अप नहीं करना। अल्लाह ताला यहां तक हमें पहुंचा दे और हमसे हर वो काम, हर वो कॉल, हर वो फेल जो जन्नत से करीब कर देने वाला हो वो हमसे करा ले, और हर वो कॉल और अमल जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला हो उससे हमें महफूज रखे।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا